तीसरा स्कंद 20वां अध्याय 14वां श्लोक इस तरह है, तानि चय कह कषः सृष्टुम असमर्थानि भौतिकम संहत्य देव योगेन हिम अंडम अवासृजन। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। तो वे यहाँ पर किसके लिए बताया गया, तो पिछले श्लोक में बताया था वे शब्द वे क्या चीज है, तो 13वें श्लोक में बताया था जीवों के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 5 तत्वों के अनेक समूह प्रकट हुए। तो फिर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि वो 5 तत्व कौन से हैं, बात करेंगे। सब हम तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। योशिष्टाब्धि सलिले आंडकोशो निरात्मकः साग्रं वैवर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः। सोशैष्टाब्धि सलिले आंडकोशो निरात्मकः साग्रं वैवर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः। सोशैष्टाब्धि सलिले आंडकोशो निरात्मकः साग्रं वैवर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः। सोशैष्टाब्धि सलिले इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद में बता रहे हैं 15वें श्लोक में, यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणानव के जल में पड़ा रहा, तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारणानव में तैर रहे हैं। That's it. इतना प्रभुपाद ने व्याख्या की है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुशीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहकंठिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर जी और मैत्रेय के बीच में संवाद चल रहा है, मैत्रेय जी के बीच में, और इससे पहले अध्याय में मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया, हरिद्वार में मिले थे दोनों आपस में, तो मैत्रेय जी ने बताया कि किस प्रकार भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया उन्होंने बिना किसी अधिक परिश्रम के। पहले भगवान ने काफ़ी फाइट किया था, लेकिन जब मारने का निर्णय किया तो उसके कान के नीचे हल्की सी एक चपत लगाई और ठक से मर गया। तनु भृंगम, जैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी, बहुत ताकतवर था हिरण्यकशिपु, लेकिन तनु भृंगम मच्छर की तरह उसको मार दिया है ना। इसी प्रकार भगवान जब वराह रूप में प्रकट हुए तो भगवान ने बिना किसी परिश्रम के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो बड़ी अच्छी एक संवाद चल रहा था, भगवान की लीलाओं का गुणगान चल रहा था। तो जैसे ही वो वर्णन खत्म हुआ तो विदुर जी ने उनसे पूछा, मैत्रेय ऋषि से, कि अच्छा जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की रचना कर दी तो फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, है ना। मतलब एक फ्लो चल रहा था भगवान की लीलाओं का, अचानक सृष्टि को पिक्चर में ले आए वो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं विदुर जी, भगवान की लीलाओं के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे वो। भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते रहना चाहिए था, बहुत टेस्ट आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि भगवान कैसे आए एकदम ब्रह्मा जी की नाक से भगवान प्रकट हुए और एकदम से बहुत विशाल का रूप धारण कर लिया, उन्होंने किस तरह से पृथ्वी का उद्धार किया और किस तरह उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तो अचानक वापस सृष्टि के चर्चा के लिए विदुर जी ने क्वेश्चन पूछा उनसे, मैत्रेय जी से, और यही संवाद सुखदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। अब सुखदेव गोस्वामी इस बात को छोड़ भी सकते थे, बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उन्होंने सारी चीज़ें तो सारी घटनाएं इत्यादि तो नहीं बताई परीक्षित महाराज को, उन्होंने तो एक सीक्वेंस पकड़ी और बता रहे थे उनको परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज मृत्यु के निकट हैं, आसन्न मृत्यु हैं, फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने यह उचित समझा कि उनको सृष्टि के बारे में बताया जाए। क्यों बताया जाए, क्योंकि एक बात है, कई कारण है इसके, एक बात यह है कि भगवान परम है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान परम है इसलिए भगवान में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में कुछ फर्क नहीं है, यह एक बात है ना, अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, एक बात यह है कि कुछ फर्क नहीं है, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि भगवान परम है इसलिए भगवान की डांट और प्यार में फर्क नहीं है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है या उसको डांट रही है तो क्या डांट में प्यार नहीं है? डांट में भी प्यार है, प्यार है इसीलिए डांट रही है। कोई पड़ोसी के बच्चे को तो बेकार में नहीं डांटता, कोई कौन बोलता है पड़ोसी का बच्चा पढ़ा पढ़ा कर दिया अच्छी तरह से, तू क्यों नहीं पढ़ रहा ध्यान से पढ़ा कर, या रोज नहाया कर, या कुछ भी अच्छी चीज के लिए क्यों नहीं बोलते वो? क्योंकि उनसे प्रेम नहीं होता, संबंध नहीं होता। अपने बच्चे से माँ को प्रेम होता है, इसलिए माँ अपने बच्चे को प्रेम करती भी है, पुचकारती भी है और डांटती भी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिस प्रकार माता के साथ ऐसा है, उस प्रकार जो भगवान है, भगवान अगर किसी को प्रेम कर रहे हैं तो भी प्रेम है, अगर किसी को डांट रहे हैं वो भी प्रेम है एक्चुअली। सो क्योंकि भगवान परम है इसलिए भगवान की डांट में और भगवान के प्रेम में कुछ भी अंतर नहीं। अगर भगवान किसी असुर का वध कर रहे हैं और भगवान किसी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज के सिर पे हाथ कर रहे हैं, एक बराबर है, एक दृष्टि से एक बराबर है, दोनों का कल्याण होगा, उससे दोनों को सुख की प्राप्ति होगी। दूसरी बात क्या है कि तो इसी प्रकार भगवान की अन्य लीलाओं में और भगवान की सृष्टि करने की जो भगवान की लीला है, भगवान का कार्य है, कुछ फर्क नहीं है। दोनों समान रूप से शुद्ध करने वाले हैं। अगर हम भगवान की लीला सुनेंगे, भगवान ने गजेंद्र मोक्ष किया, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याकश्यपु का वध किया, भगवान ने पांडवों का कल्याण किया और भगवान ने सृष्टि की, तो ये सारी चीजें एक ही स्तर पर हैं, क्योंकि परम भगवान से संबंधित हैं। जितना शुद्धिकरण, जितनी हमारी चेतना शुद्ध होगी भगवान के अन्य लीलाओं के बारे में सुन के, उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा भगवान की सृष्टि के बारे में सुन के। तो भगवान की सृष्टि के बारे में बार बार भागवतम में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि एक ही बार आ रहा है, दूसरे अध्याय में पूरी सृष्टि का वर्णन चल, दूसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन चल रहा है पूरा। वो क्यों चल रहा है बार बार, अलग अलग दृष्टिकोण से सृष्टि के क्यों वर्णन कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भगवान ने सृष्टि किस प्रकार की, अगर हमारे आचार्यों ने, साधुओं ने, संत महात्माओं ने अगर नहीं बताया होता तो हमें जो नास्तिक लोग हैं उनकी जो व्याख्या है उस पर निर्भर रहना पड़ता है ना। जैसे जो ईसाई हैं, ईसाइयों ने बाइबल के आधार पर उन्होंने सृष्टि का टाइम निकाला, उन्होंने तो पता नहीं कैसे एकदम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम निकाल लिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो सृष्टि की रचना है वो 23 अक्टूबर 4004 बिफोर क्राइस्ट, 23 अक्टूबर सन 4004 मतलब आज से करीब 6000 साल पहले। हाँ, सो 23 अक्टूबर सन 4004 में सुबह के 9 बजे सृष्टि की रचना हुई, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम निकाल दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद ने पूछा अपने डिसाइपल से कि ऐसे मतलब एक्यूरेट ऐसे कैसे निकाल दिया, उन्होंने बोला उन्होंने कैलकुलेशन किया कि वो एडम ईव थे, फिर एडम ईव ने वो सेब खाया तो आगे उनके मतलब संतानें हुई, फिर उनकी संतानें हुई, फिर उनकी संतानें हुई, तो ऐसे करके जो ईसाई थे उन्होंने बैकवर्ड कैलकुलेशन किया कि चलो आज हम यहाँ खड़े हैं, ये संतान है, फिर ये हुआ था, चलो हम इस सन में पहुँच गए, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, करके करके वो सन 4004 बिफोर क्राइस्ट में पहुँच रहे। वो तो उन्होंने बोला कि देखो ये 23 अक्टूबर सन 4004 सुबह 9 बजे सृष्टि की रचना हुई। आर्च बिशप ने इस पर ठप्पा लगा दिया कि भैया ये फाइनल है, इसके ऊपर अब डाउट नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ओके फाइन, सब लोगों ने बोला ठीक है, सब लोग राजी खुशी चलने शुरू हो गए। फिर अचानक एक व्यक्ति आया और उसने पूरा उथल पुथल कर दिया चीजों को। और वो व्यक्ति था हमारे अकिंचन प्रभु बता रहे हैं, डार्विन। तो डार्विन ने 1859 में डार्विन ने थ्योरी लेके आया, डार्विन ने एक सिद्धांत लेके आया कि इवोल्यूशन का। हाँ, तो डार्विन ने बोला भैया सब बेकार है, लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म बननी शुरू हुई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लेके आया कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मूल संरचना में परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले फिश थी। तो अनेक साइंटिस्ट ने अब बाद में पूछना शुरू किया कि अच्छा भाई सबसे पहले फिश थी और फिश से इवोल्यूशन हुई, तो फिश कहां से आई? फिश भी तो कहीं से आई होगी, ऐसा कैसे है कि मतलब अचानक फिश आ गई? वो फिश कहां से आ गई? अगर फिश एक्सीडेंट है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट है, जो बिग बैंग थ्योरी है कि एक्सीडेंट से बन गया, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्सीडेंट साइंटिफिक नहीं है। एक्सीडेंट का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी एक्सीडेंट होगा, देखना आज एक्सीडेंट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वही सिचुएशन में दोबारा एक्सीडेंट होगा, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरा जो साइंस है वो एक्सीडेंट पे बेस बना दिया उन्होंने, इसीलिए जो साइंस है वो साइंटिफिक नहीं है। प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने डिसाइपल के साथ चर्चा में। बोल रहे कि पूरा साइंस ही एक्सीडेंट पे बेस कर दिया उन्होंने। सो जब 1859 में डार्विन ने ये फिलॉसफी लेके आया, तो जो क्रिश्चियंस हैं इसको काट नहीं पाए, इसको काट नहीं पाए वो। उन्होंने बोला कि वेल नेक्स्ट बेस्ट थिंग उन्होंने क्रिश्चियंस ने करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्रिश्चियनिटी और डार्विन जो डार्विन की थ्योरी है उसको रिकनसाइल कर लेते हैं, मिलके चलते हैं। तो उन्होंने उसको मिलके चलने की कोशिश की। हालांकि डार्विन ने कभी भी जो बाइबल का मत है उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि जो इवोल्यूशन है वो भी भगवान कर रहे हैं इवोल्यूशन, या जो फिश आई थी वो भी भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा से आई थी, ऐसा डार्विन ने कभी बोला नहीं। लेकिन ईसाइयों ने ये चीज़ लेके चलना शुरू कर दिया ताकि उनका जो फेथ है ईसाइयों का वो फेथ ख़त्म नहीं हो जाए, वो फेथ किसी ना किसी तरह से टिका रहे। मतलब ऐसा नहीं हो कि लोग बिल्कुल फेंक के चले जाएं। अभी एक नई चीज डिस्कवर की है जेरूसलम में, कुछ लोगों ने ईसा मसीह की जो वो है समाधि है, टूम्ब है, जो टूम्ब को क्या बोलते हैं, समाधि, मकबरा जो है, कब्र जो है, वो कह रहे हैं कि हमने कब्र खोज ली है। अब क्रिश्चियनिटी किस चीज पर बेस्ड है? क्रिश्चियनिटी बेस्ड है कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया और फिर उनको कब्र में दफना दिया और फिर वो 3 दिन के बाद ही रोज फ्रॉम द डेड, वो वापस रिसरेक्टेड हो गए, वापस जीवित हो गए और चले गए, और फिर वो वापस आएंगे जो राइट टाइम होगा। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट की अगर कब्र मिल गई, उनके अवशेष मिल गए, तो पूरी क्रिश्चियनिटी जिस बेस पर टिकी हुई है वो बेस खत्म हो जाएगा, नहीं? तो अगर सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि की रचना अगर अलग अलग दृष्टिकोण से हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो हम लोगों को नास्तिकों की एक्सप्लेनेशन कि देखो सृष्टि ऐसे बनी होगी, तो हमें उस पर निर्भर करना पड़ता हमें। इसीलिए हमारे साधु महात्माओं ने बहुत मेहनत की, बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से सृष्टि की रचना कैसे हो रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और सृष्टि की रचना इसलिए भी एक्सप्लेन की गई है ताकि हम भगवान की महानता को समझें। जब हम एक फ्लावर को देखें, एक पत्ते को देखें, जब हम सुंदर पहाड़ नदियों को देखें, तो हम ये सोच लें कि भगवान ने इतनी सुंदर परफेक्ट जो रचना की है, जिस व्यक्ति ने ये रचना की है वो व्यक्ति स्वयं कितना महान होगा। तो हमारी उन भगवान में जिन्होंने इतनी सुंदर रचना की, सृष्टि की, उनमें हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो हमारी श्रद्धा भगवान में बढ़ाने के लिए जो हमारे आचार्य हैं, साधु महात्मा हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की व्याख्या की है उन्होंने इतनी डिटेल के अंदर, है ना। सो ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें भागवतम के उन अंशों को जहाँ पर सृष्टि की रचना की व्याख्या कर रही की कर रखी है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। ओ यार ये तो बोरिंग टॉपिक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। जैसे कि पिछले इसी श्लोक में जैसे बताया कि चमकीला अंडा पैदा हुआ, जो महातत्व काल, भगवान की मर्सी, और तीसरी चीज जो जीवों की इच्छा है, ये तीन चीजें जब कार्य किया महातत्व पर, तो चमकीला अंडा पैदा हो गया। एक्चुअली में तो चमकीला अंडा जब पैदा हुआ तो उसमें तीन कारक काम कर रहे थे, तीन कारक काम कर रहे थे। एक तो तीनों गुण काम कर रहे थे, काल काम कर रहा था, भगवान की शक्ति काम कर रही थी, और तीसरी चीज क्या काम कर रही थी, जीवों की इच्छा। जीवों की इच्छा कैसे काम कर रही थी, क्योंकि हालांकि जीव निष्क्रिय अवस्था में थे भगवान के शरीर में महत्त्व के अंदर, फिर भी उनके अंदर भोगने की इच्छा बरकरार थी। ऐसा नहीं था कि जब जीव निष्क्रिय अवस्था में है उनकी भोग वासना, काम वासना, भोगने की इच्छा खत्म हो गई थी, उनकी भोगने की इच्छा बरकरार थी। और जब वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हो गई टाइम के प्रभाव से, तो उसने उत्तेजित कर दिया महातत्व को, और भगवान की शक्ति की कृपा से और काल के प्रभाव से ये चमकीला अंडा पैदा हो गया। अब वो चमकी अंडा जो है वो चमकीला क्यों है, क्वेश्चन ये है, नहीं जो अंडा है वो चमकीला क्यों है, काला क्यों नहीं है। वो अंडा चमकीला इसलिए क्योंकि भगवान चमकीले हैं। भगवान का जो भगवान की जो अंग कांति है, ब्रह्म ज्योति, बहुत ही सुपर एक्सीलेंट चमकीली है वो। इसीलिए ईशोपनिषद में बोला गया हिरणमयन पात्र नाम, कि जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है बहुत ही सुनहरी चमकदार है, भगवान के शरीर से बहुत चमक निकल रही है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वहां पे हर चीज चमक रही है। क्यों? क्योंकि हर चीज अपनी स्वाभाविक अवस्था में है ना, और क्योंकि जीव भगवान के अंश हैं इसलिए वो भी चमकीले हैं। आप सब चमकीले हो एक्चुअली में, लेकिन अभी क्योंकि ढके हुए हैं इसलिए रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि भगवान चमकीले हैं, भगवान के अंश चमकीले हैं, इसीलिए ये जो अंडा है ये भी अंडा चमकीला पैदा हुआ। लेकिन ये अंडा चमकीला पैदा तो हो गया, लेकिन ये अंडा अपने आप में कुछ काम नहीं कर पा रहा था, निष्क्रिय पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि इसने अपने आप कुछ काम करना शुरू कर दिया। उस अंडे को सक्रिय करने के लिए यहां पर बताया गया कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में आए। पहले तो कर्णोदक्षाई विष्णु थे, उनसे ये अंडा उत्पन्न हुआ, उनके रूप कोमों से, है ना। यस्य एक निश्वसित कालम अथ विलंब्य जीवंति लोम विजा जगदंड नाथा विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो भगवान के रोम कूपों से अनेक ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि एक ब्रह्मांड एक चमकीला अंडा निकल आया और कारणोदकशाही कारणोदक समुद्र पर तैरने लग गया। तो यही ग्रेविटी है, कारणोदकशाही कारणोदक जो समुद्र है उस पर तैर रहा है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सभी ब्रह्मांड इस कारणोदक समुद्र में तैर रहे हैं। हाँ, और हम लोग अभी तक अपने ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम लोग अभी तक जो साइंटिस्ट हैं अपने ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ों को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम अपने ब्रह्मांड से बाहर निकलकर ये देख नहीं पा रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांड और भी हैं, असंख्य ब्रह्मांड और भी हैं। इसका वर्णन हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है, जब चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा उनसे मिलने चले गए, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं इस ब्रह्मांड के। तो जब मिलने चले गए तो द्वारपाल ने रोक दिया उनको, भैया कहाँ जा रहे हो अंदर? तो उन्होंने बोला, अरे जाके बोलो ब्रह्मा मिलने आए हैं। तो द्वारपाल ने कहा, रुको रुको, अभी मैं ये कुर्सी पे बैठो, अभी मैं पता करके आता हूँ। सो गए द्वारपाल, गए और भगवान कृष्ण ने पूछा कि ब्रह्मा जी मिलने आए? तो उन्होंने बोला, जाके पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी मिलने आए। तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि कौन से ब्रह्मा जी मिलने आए। तो उन्होंने बोला, उनको बोलो चतुर्मुखी ब्रह्मा मिलने आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला, ठीक है आने दो अंदर। और जब ब्रह्मा जी अंदर जा रहे थे तो सोच रहे थे कि जाते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा, कि आखिर आपने ये क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, कितने ब्रह्मा है, आखिर मैं अकेला ही तो हूं। लेकिन जैसे ही भगवान के दरबार में पहुंचे वो, तो उन्होंने क्या देखा, करोड़ों ब्रह्मा थे वहां पर, और कोई ब्रह्मा 8 सिर का, कोई 16 का, कोई 32 का, कोई 64 का, कोई 1 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा, 1 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा, कोई 10 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा। तो क्या ब्रह्मा जी ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा जी को क्लियर हो गया कि बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी जो हमारे ब्रह्मा जी हैं बहुत महान हैं, हमारे आचार्य हैं। लेकिन उस समय उनको कैसा लग रहा था, जैसे हाथियों के झुंड में खरगोश घुस जाता है, डरता है ना कि मुझे कुचल ना दे। तो उस घटना से हमें पता चलता है कि असंख्य ब्रह्मांड है, और उन असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण हमने चर्चा की कि भगवान के जो भगवान की लीला की चर्चा करते करते सृष्टि की बात क्यों आ रही है, और भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के व्याख्या में श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट कर रहे हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्यों सृष्टि की व्याख्या बार बार की गई है भागवतम में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान के वृंदावन की लीलाएं हैं, वो महान भक्तों के सुनने के लिए हैं। अगर कोई भौतिक व्यक्ति सुनेगा भगवान की लीलाओं को तो उसके मन में काम वासना बढ़ जाएगी। जो भौतिक व्यक्ति हैं लेकिन जिनमें थोड़ी श्रद्धा है लेकिन अभी पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ, उन लोगों को भगवान की सृष्टि इत्यादि की रचना, जो भगवान ने इन लीलाओं को सुनना चाहिए, इससे उनकी प्योरिफिकेशन होगी और वो लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे और उनका संशय निवारण भी होगा। एक और दृष्टिकोण है समझने का कि आखिर सृष्टि की रचना के बारे में भगवान ने सृष्टि की रचना बार बार, सृष्टि की रचना किस प्रकार की, वो अलग अलग तरह से क्यों बताया जा रहा है। तो कृष्ण भगवद गीता में इसका इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ, वेल वो तो हाँ चलो ये भी बोला जा सकता है, भगवान कार्य कैसे कर रहे हैं, सूत्रे मणि गणा इवा अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, हर चीज मुझ में स्थित है। हाँ तो भगवान ये बात क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं भगवान ये बात, इसके इस श्लोक के अगले लाइन में भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अगर कोई ये समझ लेता है कि सृष्टि की रचना मैंने की है, मैं आदि हूं, मैं हेतु हूं सृष्टि का, मेरे संकल्प से मेरी इच्छा से मुझसे ये सृष्टि की रचना हुई है, इति मत्वा भजन्ते माम, अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर मेरा भजन कर रहा है तो क्या होगा, बुधा, बुधा का मतलब नॉलेज, बुधा नॉलेज आ जाएगी उसको कि आखिर भगवान सृष्टि की रचना कैसे कर रहे हैं, और ये भी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, बुधा ये नॉलेज आ जाएगी। और जब नॉलेज आ जाएगी, इस नॉलेज को ध्यान में रखकर जब एक भक्त भगवान का भजन करेगा तो भाव समन्विता, उसके अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीला, उसमें उसकी रुचि उसका भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले बुधा शब्द आ रहा है, हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले बुधा शब्द आ रहा है फिर भाव आ रहा है, तो पहले नॉलेज आएगी फिर भाव आएगा। कई बार एक क्वेश्चन उठाते हैं ना कि नॉलेज की क्या जरूरत है, अगर भगवान भाव प्रधान है, भक्ति भाव प्रधान है, तो फिर नॉलेज की क्या जरूरत है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक के द्वारा इसका इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भाव बिना नॉलेज के नहीं आएगा, और हर चीज एक्चुअली में देखा जाए तो नॉलेज है, हर चीज नॉलेज है। कृष्ण भगवान है, क्या यह नॉलेज नहीं है, भगवान कृष्ण ने सृष्टि की रचना नहीं रचना की, क्या ये नॉलेज नहीं है, क्या ये ज्ञान नहीं है, भगवान नंद महाराज के पुत्र हैं ये भी नॉलेज है, हर चीज भगवान से संबंधित नॉलेज है। ये बात अलग है कि नॉलेज दो तरह की होती है, एक शुष्क ज्ञान होता है और एक भगवान से संबंधित ज्ञान होता है। तो जब बात की जाती है कि नॉलेज के पीछे ज्ञान के पीछे मत भागो, तो ये बात की जाती है कि नैति नैति ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, जो मायावादी है, जो निराकारवादी है, जो कि आध्यात्म की तलाश कर रहे हैं और वो हर वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या ये स्टूल आध्यात्मिक है कि नहीं है, क्या ये पुस्तक आध्यात्मिक है कि नहीं है, क्या ये माइक आध्यात्मिक है कि नहीं है, तो वो बोलते हैं नहीं ये आध्यात्मिक नहीं है, नैति नैति, वो शुष्क ज्ञान के पीछे भागने से बात नहीं बनेगी। लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान की नॉलेज, पहली बात है कि भगवान से अभिन्न है, और जब हम भगवान के बारे में नॉलेज लेंगे, जब हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बुधा जब हम वो नॉलेज ले लेंगे, बुधा भाव समन्विता, वो नॉलेज लेने से हमारे भगवान में श्रद्धा और अधिक बढ़ेगी, और अधिक बढ़ेगी। इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहां लागे कृष्ण हिते सुदृढ़ मानस, कि सिद्धांत को समझ में कि भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, क्योंकि ये समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत समझना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हम ये सिद्धांत समझेंगे, भगवान अलग अलग लीलाएं, अलग अलग भगवान कार्य क्यों कर रहे हैं, इसको समझने से कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इसको समझने से भगवान कृष्ण में हमारी जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ होगी, हमारी श्रद्धा और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार एक्सप्लेन। और जब हम ये समझेंगे कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, तो हम नेचुरली ये क्वेश्चन भी समझ लेंगे कि भगवान ने सृष्टि की रचना अगर की है तो क्यों की है। तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है हम पर बहुत ही कृपा करने के लिए। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, हम समझ जाएंगे, हमें सुधारने के लिए, हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए, हमें व्यक्तिगत अनुभव देने के लिए कि ये सृष्टि में सुख नहीं मिल सकता। अगर आपको सुख चाहिए तो बहिर्मुख होकर सुख नहीं मिलेगा, उन्मुख होकर, सन्मुख होकर भगवान की सेवा में लगने से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये समझने के लिए जब तक सृष्टि नहीं होगी, भगवान की कृपा सिर्फ गोपियों पर ही परिलक्षित नहीं हो रही है, भगवान अपनी कृपा अलग अलग जीवों पर उनकी रुचि उनकी योग्यता के अनुसार भगवान कृपा बांट रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो अभी हम जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, हम पर भगवान कृपा कर रहे हैं हमें ये नॉलेज देकर कि आप अपने आप को, पहली बात है, बद्ध समझना शुरू कर दो। जब तक आप अपने आप को बद्ध समझना नहीं शुरू करोगे, आप ये नहीं समझ जाओगे कि आप इस भौतिक संसार में, इस शरीर में मन बुद्धि अहंकार भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच, इन आठ वस्तुओं से, इन आठ पदार्थों से आप ढके हुए हो, बंधे हुए हो जंजीर से, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जंजीरों से बंधे हुए हो, तब तक हम इनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। बाहर निकलने की कोशिश व्यक्ति तभी करता है जब उसको घुटन महसूस होती है, उसको लगता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा सुख ले नहीं पा रहा हूँ या मैं दुख पा रहा हूँ। तो भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना की हमारे सुधार के लिए, हमें वापस भगवान की सेवा में संलग्न होने का अवसर प्रदान करने के लिए। सो अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये सृष्टि की रचना भगवान ने की, कि हम भगवान के सेवा में, ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है, और कई लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, कई लोग भगवान की इनडायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। तो हम भगवान की इनडायरेक्ट सेवा का मतलब है माया की सेवा। तो भगवान की कृपा से इन शास्त्रों में जो सृष्टि का वर्णन है, जो भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, सृष्टि की रचना के माध्यम से, सिद्धांत की व्याख्या के माध्यम से, हम ये समझ सकते हैं कि हमें भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा करने की बजाय भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में जुड़ना चाहिए। अगर हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में जुड़ेंगे तो केवल यही एकमात्र उपाय है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए। और ये सारी चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की है, इन टॉपिक्स को, इन विषयों को भी बहुत ही सावधानी से और बहुत ही गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की